समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार, हमारे स्टूडियो की घड़ी में ठीक 4:30 बजे हैं और 100.1 MHz पर यह समय है आपके अपने न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा का, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं वो सारी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार हम आपको बताएंगे, राज्यों की परिक्रमा के लिए चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि क्या कुछ खास है उनके पास। इसके अलावा खेल गतिविधियों और आर्थिक जगत पर भी रहेगी हमारी नजर और उन विशिष्ट हस्तियों को भी हम करेंगे याद जिनकी आज है पुण्यतिथि या फिर जन्मदिवस। श्रोताओं, परिक्रमा के इस अंक के साथ मैं हूं मुदिता और मेरे साथ है मेरे को होस्ट अभिषेक मुखोपाध्याय। अभिषेक, आपको भी मेरा नमस्कार।
हेलो मुदिता, हेलो एंड गुड आफ्टरनून। यू आर ट्यून्ड टू परिक्रमा ऑन 100.1 FM। आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय, विद मी टुडे इज माय को-होस्ट मुदिता, एंड फॉर यू वी हैव अ सिलेक्शन ऑफ न्यूज, अ डिस्कशन सेगमेंट, डेटलाइन इंडिया रिपोर्ट्स, कैप्सूल्स, ट्रिब्यूट्स एंड मच मोर। ऑल दीज ओवर द नेक्स्ट 30 मिनट्स। नाउ वी बिगिन विद द न्यूज हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च मुद्रा योजना एज साइलेंट रेवोल्यूशन एम्पावरिंग एंटरप्रेन्योर्स ऑन इट्स 10th एनिवर्सरी।
सर्वोच्च न्यायालय ने तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि के 10 विधेयकों को राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए सुरक्षित रखने के फैसले को अवैध और गलत करार दिया।
एक्सटर्नल अफेयर्स मिस्टर डॉ एस जयशंकर होल्ड्स मीटिंग विद द क्राउन प्रिंस ऑफ दुबई शेख हमदान बिन मोहम्मद अल मक्तूम टू एनहांस टाइज बिटवीन टू कंट्रीज।
जम्मू कश्मीर में 3 और राजनीतिक संगठनों ने अलगाववादी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से खुद को अलग कर लिया।
एशियन मार्केट्स रिबाउंड डिस्पाइट ट्रंप्स टैरिफ थ्रेट्स, बीएसई सेंसेक्स रैलीज ओवर 1200 पॉइंट्स।
चीन ने अमेरिका के राष्ट्रपति की 50% अतिरिक्त शुल्क लगाने की धमकी को ब्लैकमेल करने की रणनीति बताया।
एंड इन आईपीएल क्रिकेट, कोलकाता नाइट राइडर्स विन द टॉस एंड इलेक्ट्स टू बोल एट ईडन गार्डन्स इन कोलकाता दिस इवनिंग। And now, listeners, it's time for a segment, Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or the global level. And today we will talk about Poshan Pakhwara. Well, every child deserves a healthy start, every mother deserves proper nourishment, and every family deserves access to nutritious food. Yet for millions in India, malnutrition remains a silent crisis, one that affects not just individuals, but the very future of the nation.
बिल्कुल सही बात है अभिषेक। भारत जैसे विशाल देश में जहां विज्ञान और तकनीक में निरंतर प्रगति हो रही है, वहीं कुपोषण हमारे लिए अब भी एक गंभीर और जटिल सामाजिक संकट बना हुआ है। और यही वजह है कि सरकार ने वर्ष 2018 में पोषण अभियान की शुरुआत की थी, ताकि महिलाओं, बच्चों और पूरे परिवार को उचित पोषण सुनिश्चित किया जा सके। इस मिशन की एक महत्वपूर्ण पहल है पोषण पखवाड़ा, जो हर साल एक व्यापक जन जागरूकता अभियान के रूप में मनाया जाता है।
And Poshan Pakhwara, an annual nutrition awareness drive, is not just another campaign, it is a clarion call for action. And the Ministry of Women and Child Development is celebrating the 7th edition of Poshan Pakhwara from today, reaffirming the government's commitment to tackling malnutrition across the country. And this year, Poshan Pakhwara focuses on 4 key themes: care during the first 1,000 days of life, popularization of the beneficiary module of the Poshan Tracker, effective management of malnutrition, and promoting a healthy lifestyle to address childhood obesity. And the Poshan Abhiyan, the flagship initiative launched by Prime Minister Narendra Modi, aims to improve nutritional outcomes for pregnant women, lactating mothers, adolescent girls and children under 6 years of age. And the 7th edition of the Poshan Pakhwara focuses on outcome-based interventions to enhance nutritional well-being.
तो श्रोताओं, इस साल 8 अप्रैल से 23 अप्रैल तक पोषण पखवाड़े का 7वां संस्करण मनाया जा रहा है और इसका मुख्य उद्देश्य है मातृ और शिशु पोषण। साथ ही क्योंकि हम डिजिटल युग में रह रहे हैं, तो डिजिटल पहुंच के जरिए लाभार्थियों को जोड़ना और बच्चों में मोटापे जैसी नई चुनौतियों से निपटना। इस वर्ष का फोकस केवल जागरूकता तक सीमित नहीं है, बल्कि समुदायों की भागीदारी और परिणाम आधारित उपायों पर आधारित है।
Yes, absolutely. And since its inception, 6 successful editions of Poshan Pakhwara have been organized, contributing to increased awareness and community participation in the National Nutrition Mission.
तो श्रोताओं, शिशु के जन्म से पहले के 9 महीने और उसके जीवन के जो पहले 2 साल होते हैं, यानी कि कुल 1000 दिन जो हैं, ये बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास की नींव रखते हैं। और पोषण अभियान इन दिनों को जादुई काल मानता है और माताओं को संतुलित आहार, उचित देखभाल और स्तनपान के लिए प्रेरित करता है।
So what if every child's growth, every mother's health and every meal served at an Anganwadi center could be tracked in real time, Mudita? Well, what if the technology could ensure that no child is left behind in the fight against malnutrition? This is no longer what if, it is a reality with Poshan Tracker. Launched on March 1st, 2021, this AI-enabled platform, that is the Poshan Tracker, has replaced bulky registers with real-time tracking via smartphones, empowering Anganwadi workers, AWWs, to efficiently manage attendance, growth monitoring, meal distribution, and early childhood education, all at the fingertips. The success of the application can be traced from the fact that as on 20th February 2025, all Anganwadi centers in India are registered on the Poshan Tracker application. And for the first time, the eligible beneficiaries, pregnant women, lactating mothers, adolescent girls and children of 0 to 6 years can self-register via the Poshan Tracker web application. Through Poshan Pakwara 2025, the government is encouraging greater participation from families as well, ensuring that beneficiaries have access to the app to monitor their own nutritional progress. Technology has made the lives of Anganwadi workers easy by providing them with a standardized guide in the form of the Community-Based Management of Acute Malnutrition Protocol, and launched in October 2023 by the Ministry of Women and Child Development with inputs from the Ministry of Health and Family Welfare. The CMAM protocol is a game changer.
जी बिल्कुल, ये गेम चेंजर है अभिषेक। तो 2023 में शुरू किया गया CMAM प्रोटोकॉल आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों की पहचान करने, रेफरल और इलाज में मदद करता है। पोषण पखवाड़ा 2025 के दौरान इस प्रोटोकॉल को केंद्र में रखा गया है ताकि हर आंगनवाड़ी केंद्र एक पोषण क्लिनिक में बदला जा सके।
And during Poshan Pakwara 2025, this protocol takes a center stage. The goal is to turn every Anganwadi into a frontline nutrition and clinic where appetite tests are routine, referrals are timely, and every child gets a chance to grow stronger. Communities will be sensitized, families will be informed, and data will be fed into the Poshan Tracker to guide policy with precision. And malnutrition isn't just about underweight children, it's also about overweight children. While India continues its fight against undernutrition, there's a growing challenge, childhood obesity. In today's world, children are increasingly exposed to high fat, high sugar, high salt, energy dense and micronutrient poor foods.
राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर 5 साल से कम उम्र के अधिक वजन वाले बच्चों का प्रतिशत 2015-16 में 2.1% से बढ़कर 2019-21 में 3.4% हो गया है। तो जैसा अभिषेक आप कह रहे थे कि केवल माल न्यूट्रिशन ही नहीं, जिन बच्चों का वजन कम है वो ही नहीं, बल्कि बच्चों का ज्यादा वजन भी अब चिंता का विषय होता जा रहा है।
एब्सोल्युटली, एंड टू एड्रेस द कंजम्पशन ऑफ फूड्स हाई इन फैट, सॉल्ट एंड शुगर एंड प्रमोशन ऑफ हेल्दी स्नैक्स इन स्कूल्स ऑफ India, the Ministry of Women and Child Development constituted a working group in 2015. The recommendations of the group were: ban the sale of all HFSS foods in school canteens and restrict the sale by private vendors within 200 meters of schools during school hours.
साथ ही इसमें कहा गया है कि स्कूल कैंटीनों में हमेशा हरे रंग के खाद्य पदार्थ जैसे फल और सब्जियां उपलब्ध होनी चाहिए।
एब्सोल्युटली, एंड आल्सो ऑरेंज कैटेगरी फूड्स सच एज कन्फेक्शनरी एंड फ्राइड आइटम्स आर नॉट रिकमेंडेड इन स्कूल कैंटीन्स।
साथ ही स्कूल कैंटीनों में हाइड्रोजनीकृत तेलों के प्रयोग पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए।
नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, दैट इज फिजिकल एक्टिविटी शुड बी मैंडेटरी इन ऑल स्कूल्स।
बिल्कुल।
एंड मूविंग ऑन, इन बिहार ऑल पोषण पखवाड़ा और न्यूट्रिशन Fourth night has been observed from today across all Anganwadi centers, Bal Vatikas and other health institutions. Bihar has significantly improved its problems related to malnutrition and its challenges among children, adolescent girls, women and pregnant ladies. Initiatives like kitchen garden, fortified grains, regular monitoring and several other interventions have given promising results. And talking to Akashvani News gender budget expert Barna Ganguly says, due to meticulous approach and supportive budgetary allocations, Bihar has significantly addressed the challenge regarding stunting and anemia. Mrs. Ganguly said Bihar is a good example among states who have significantly invested in demographic assets creation by devising specially catered portion drives. And she added that interventions like AI technology will further improve efficacy of the drive.
Nutrition is the prime requirement of everyone, and mainly it is an immense requirement for a mother, including pregnant mother and lactating mother. And this kind of drive is not only fulfilling the nutritional need of the children, but it is also spreading awareness. So Poshan Pakhwara is a kind of an awareness campaign, which is a movement to transform nutrition along with a move to address one mother, one child, and as well as one meal at a time.
तो श्रोताओं, जैसा कि आपको अब समझ में आ रहा होगा कि पोषण पखवाड़ा 2025 सिर्फ जागरूकता अभियान से कहीं ज्यादा है। ये एक समय में एक माँ, एक बच्चे और उनके भोजन के पोषण को बदलने का एक आंदोलन है, जिसके लिए परंपरा को तकनीक के साथ जोड़ा गया है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सशक्त बनाने की कोशिश है और समुदायों को शामिल करके भारत एक स्वस्थ मजबूत पीढ़ी के निर्माण की दिशा में साहसिक कदम उठा रहा है। और अब समय है राज्यों की परिक्रमा का, अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास क्या है खास। तो अभिषेक, सबसे पहले हम कहां चल रहे हैं?
Yes, we start off with a story from Mumbai. And for the very first time, a tri-services all-women expedition from Mumbai to Seychelles and back has been flagged off from Mumbai. And this is a preparatory mission for the team scheduled to undertake a circumnavigation of the world in 2026. We have more from our Mumbai correspondent.
Lieutenant General A.K. Ramesh, Commandant of the College of Military Engineering, Pune, flagged off the expedition on board IASV Triveni. The team comprises 12 women officers from the Indian Army, Navy and Air Force under the leadership of Captain Dolly Butola. The expedition has two phases. In the first phase, a group of 6 women officers will sail to Seychelles, while the second group is scheduled to sail back to Mumbai. Elaborating on the objectives of the expedition and the challenges ahead, here is Captain Dolly Butola.
The crew will be sailing in the Indian Ocean and will encounter strong waves, variable current, zero wind conditions near the equator, onset of monsoon in the return leg, and all kinds of sea states. This is the first time we are going to cross the equator, which in itself is an iconic moment in any sailor's journey. Total distance we are going to cover is approximately 1,702 nautical miles. The total number of days we are going to take to reach the final destination is approximately 18 days.
Speaking on the occasion, Lieutenant General A.K. Ramesh praised these courageous women officers and emphasized the importance of women in the armed forces. He said,
each team of women who have come up through a rigorous selection process that began with actually 42 volunteers from the 3 services, including one woman soldier from the Assam Rifles. Having been selected, they have undergone close to 2 years of structured training and scaled over 4,000 nautical miles and braved some very challenging sea conditions and harsh weather.
Expressing full confidence in her crew and their mission, here is Captain Dolly Butola once again.
After getting trained for almost 2 years, now I feel confident that we can go anywhere in the world on our sailing boat, which is Triveni.
As IASV Triveni sails towards Seychelles, let us wish our brave women officers a safe journey and look forward to hearing more inspiring stories from them after their return. For Parikrama, Ankita Apte from Mumbai.
Yes, and moving on, Bagpara, a village in the Komna block of the Nuapara district, Odisha, has undergone a remarkable transformation in the last decade. Historically, this region was known for being drought-prone, non-industrial and affected by Naxalite violence. And things began to change when the government introduced various schemes and flagship programs to improve the situation in this vulnerable district. Our Sambalpur correspondent speaks more about this.
One such success story comes from Bagpada, where villagers turned to mushroom farming, a decision that has become a beacon of hope for those who no longer want to leave their homeland for food and livelihood. A decade ago, Kuber Kumar Bagh, an educated youth from Bagpada, decided to break the tradition of migration and stay in the village. He took training from the horticulture department and introduced mushroom farming to his fellow villagers. Kuber organized a meeting and encouraged families to adopt horticulture, offering it free. Initially, two families took off mushroom mushroom farming and quickly saw positive result with low cost and a high return. The success of these families inspired others, and soon the entire village was cultivating mushroom. With the help of various government schemes, villagers now grow multiple varieties of mushroom such as palm chat, dingri, button and blue star. These mushrooms are in high demand in the local market and beyond, reaching neighboring districts like Kalahandi, Balangir and Bargad. Bagpada's residents are now economically stronger, able to educate their children and save money. They have become self-reliant and even employed others, transforming the village into a model of sustainable agricultural success. For Parikrama, Bismita Padhan, Akashwani, Sambalpur.
और अब चलते हैं हम छत्तीसगढ़ की ओर, जो अपनी लोक कला के लिए जाना जाता है. राज्य के जशपुर जिले के कांसबेल विकासखंड के अंतर्गत टाटीडांड गांव की रहने वाली रिंकी यादव आज सफलता की मिसाल बन चुकी हैं. पारंपरिक छिंद कांसे से बनी सुंदर टोकरियों को अपनी आजीविका का साधन बनाकर उन्होंने गांव की अन्य महिलाओं को भी आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा दी है. पेश है हमारे संवाददाता विकल्प शुक्ला की ये रिपोर्ट.
रिंकी यादव पिछले 6 वर्षों से छत्तीसगढ़ शासन की महत्वाकांक्षी बिहान योजना के तहत संचालित राखी स्व सहायता समूह से जुड़ी हुई हैं. वर्ष 2019 में उन्होंने पारंपरिक टोकरी निर्माण के कार्य को केवल घरेलू उपयोग से आगे बढ़ाकर इसे आर्थिक सशक्तिकरण का माध्यम बनाया. समूह से जुड़ने के बाद उन्हें इस कार्य को व्यावसायिक रूप देने का अवसर मिला. आज उनकी वार्षिक आमदनी समूह के माध्यम से लगभग 1 लाख रुपए तक पहुंच चुकी है. इसके अतिरिक्त वे व्यक्तिगत स्तर पर भी छिंद कांसे की टोकरियां बनाकर 20 से 30 हजार रुपए तक की अतिरिक्त आमदनी अर्जित कर रही हैं. ये आमदनी उनके परिवार के भरण पोषण, बच्चों की पढ़ाई और घरेलू आवश्यकताओं को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है. उनकी मेहनत और लगन का ही परिणाम है कि अब वे अपने सपनों का पक्का घर भी बना रही हैं, जिसका निर्माण कार्य तेजी से जारी है. रिंकी यादव का कहना है कि स्व सहायता समूह से जुड़ने के बाद उन्हें शासन की योजनाओं, प्रशिक्षणों और अवसरों की जानकारी मिली. इससे उनके जीवन में न केवल आत्मविश्वास का संचार हुआ, बल्कि सामाजिक स्तर पर भी सहभागिता बढ़ी है. बिहान योजना से जुड़ने के बाद उनके जीवन की दिशा ही बदल गई और अब वे खुद को आत्मनिर्भर महसूस करती हैं और अपने बच्चों को बेहतर भविष्य का देने का सपना भी साकार होते हुए देख रही हैं. परिक्रमा के लिए आकाशवाणी रायपुर से मैं विकल्प शुक्ला.
In a significant step towards boosting milk production and cattle quality in Puducherry, the Union Territory of Puducherry has welcomed its first ever calf born through advanced embryo transfer technology. Here's a report from a correspondent.
At a quiet farm in Kadavapet village near Villiyanur, history was made on March 28 when a female Jersey crossbred calf was born. But this wasn't just any birth. It was Puducherry's first calf delivered through in vitro fertilized embryo transfer technology, or IVF-ET. The advanced reproductive technique was carried out as a part of a pilot initiative supported by the Rashtriya Gokul Mission. The process began on July 1st last year when a 7-day-old embryo was transferred to a Jersey cow owned by a local farmer. A successful conception was confirmed in October, culminating in the delivery of the elite calf with superior genetic traits. Veterinary Assistant Surgeon Dr. V. Anandaraman of the Villiyanur Veterinary Dispensary oversaw the procedure. Under the program, 350 healthy cows belonging to dairy farmers in Puducherry and Karaikal were selected and embryos were implanted in 125 of them. Of these, 31 showed successful conception, an encouraging 25% success rate, which is higher than the national average. The IVF-ET process is estimated to cost ₹21,000 per cow. But thanks to a ₹5,000 subsidy from the center and a 16,000 contribution from the Puducherry government to the National Dairy Development Board, the service has been made affordable and accessible to local farmers. Talking to Agashwani, Dr. K. Kumaran, Joint Director of Animal Husbandry and the project's nodal officer, credited the achievement to the Rashtriya Gokul Mission. He pointed out that this initiative helps preserve indigenous cattle breeds while rapidly improving their genetic potential. While IVF in cattle requires specialized expertise, equipment and facilities, its benefits are immense, from faster genetic improvements to better herd management and increased milk yield. Experts say the female cows produced through this method are expected to yield up to 5,000 liters of milk per lactation, or roughly 25 liters per day. With this breakthrough, Puducherry is now poised to lead the way in modern dairy development, setting an example for other regions to follow. For Parikrama, this is Bibin Asnath, Akashwani News, Puducherry.
श्रोताओं, वैसे तो देश भर में रामनवमी का त्यौहार संपन्न हो गया है, लेकिन झारखंड का हजारीबाग ऐसा जिला है जहां आज भी रामनवमी की रंगारंग शोभा यात्रा निकाली जा रही है। आइए सुनते हैं एक रिपोर्ट।
झारखंड के हजारीबाग जिले में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच रामनवमी की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई है। शोभा यात्रा में करीब 108 अखाड़े शिरकत कर रहे हैं। लाखों की संख्या में राम भक्तों का सैलाब देखने को मिल रहा है और वे हैरतअंगेज करतब भी दिखा रहे हैं। चारों ओर ढोल नगाड़ों और भक्ति गीतों से पूरा वातावरण गूंज रहा है।
कार्यक्रम बहुत अच्छा लग रहा है। रामनवमी के पर्व को मनाया जा रहा है, बहुत अच्छा है। यहाँ के जैसे तो हम कहीं नहीं देख रहे हैं। पूरा भगवानमय हो गया, राममय हो गया है यहाँ।
राम भक्तों की सेवा के लिए स्थानीय सांसद मनीष जायसवाल ने अपने कार्यालय में सांसद सेवा केंद्र की स्थापना की है। श्री जायसवाल ने कहा कि रामनवमी आपसी एकता और भाईचारे का प्रतीक है।
जरूरत है कि सनातन धर्म अपनी एकता को दिखाए। सनातन धर्म एक हो, मजबूत हो, इस भारत के साथ तमाम सनातनी एक रहे, अपने धर्म पर आस्था रखें, अपने परंपराओं पर विश्वास रखें।
शोभा यात्रा को लेकर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। जिले की उपायुक्त नैंसी सहाय ने कहा है कि इस विशेष शोभा यात्रा को देखते हुए सुरक्षा के लिहाज से कई एहतियाती कदम उठाए गए हैं। 145 सीसीटीवी कैमरे से शोभा यात्रा की निगरानी की जा रही है।
100 से ऊपर हमारे अखाड़े हैं। सभी रूट्स पे हमारे जो फोर्स है, मैजिस्ट्रेट है, वो सभी उपस्थित हैं। मेडिकल कैंप्स हो या टॉयलेट्स की व्यवस्था हो, पानी पीने का की व्यवस्था हो, सारी चीजें हम लोग इन प्लेस हैं और आशा है कि हम लोग शांतिपूर्वक उसे पूरा करें।
हजारीबाग में शोभा यात्रा का जगह जगह स्वागत हो रहा है और रामनवमी की इस शोभा यात्रा का समापन आज देर रात तक चलने की संभावना है। परिक्रमा के लिए हजारीबाग से गौरव प्रकाश के साथ रांची से शिल्पी की एक रिपोर्ट।
In business news today, the benchmark domestic equity indices staged a strong comeback today, with both the indices rising around 1.5%, supported by buying across all sectors and positive global cues. The 30-share index of the Bombay Stock Exchange Sensex climbed 1,089 points to close at 74,227. The National Stock Exchange Nifty 50 rose 374 points to settle at 22,536. In the global crude market, Brent crude was trading over 0.5%, up at $64.54 per barrel. And on to some sports news. In the IPL cricket, Lucknow Super Giants were at 170 for 2 in 15.2 overs when against Kolkata Knight Riders at the Eden Gardens, Kolkata, when reports last came in. Earlier, Kolkata Knight Riders won the toss and opted to bowl. And now we will take you on a tour of India's freedom struggle and recall events that happened on this day.
Today, we remember Mangal Pandey, whose courage helped arouse the fire of independence in the hearts of native sepoys. Mangal Pandey hailed from Balia district of Uttar Pradesh. He was a sepoy of the 34th Infantry stationed at Barakpur.
In 1857, the Britishers introduced a new Enfield rifle that required a soldier to bite off the ends of greased cartridges in order to load the weapon. A rumor spread that the lubricant used in the cartridges was either cow or pig lard. A belief arose among the sepoys that the British had deliberately used the lard on the cartridges.
On March the 29th, 1857, Pandey tried to arouse his fellow sepoys to rise up against the British officers.
Yahi mauka hai. Is paar ya us paar.
Aag aisi lagi hai dilon mein, na puchhegi kisi ke bujhai.
He attacked two of those officers, attempted to shoot himself after having been restrained, and eventually was overpowered and arrested. Pandey was soon tried and sentenced to death. He was court-martialed and hanged at Barakpur on 8th of April 1857.
After 1 month of this incident, on the 10th of May 1857, sepoys revolted in Meerut, and that led to the outbreak of the First War of Independence in 1857.
We also pay tribute to Ropui Liani, the daring Mizo freedom fighter. Born in 1828, Ropui Liani was the daughter of a great Mizo chief, Lal Savunga, and was married to Wandula, an equally prominent chief of South Lushai Hills. In early 1890, the British started to establish supremacy over some Mizo regions. However, Mizo chiefs did not accept British authority.
Rupoiliani took the reins of principality after the death of her husband, Wandula, and began to rule from her village, Ralwong. She challenged the British authority and encouraged people to disobey Britishers' diktats.
She told other chiefs who had joined the British,
"Even if you all surrender, I am here, the daughter of Lal Savunga. We will never surrender to foreign rulers."
She became a rallying point for Mizo principalities against the British.
Enraged by her resistance, the Britishers sent several campaigns to subdue her. In one such campaign, British Lieutenant Stewart, along with two soldiers, was killed. Rapuiliani and her son, Lal Thuama, were accused of instigating other chiefs by the British. Later, the British were successful in arresting her. Even after her capture, Britishers feared that her presence, even as a captive in the area, would escalate tension and disaffection among the locals. Thus, from the 8th of April 1894, she was held captive for almost 2 years in Chittagong Jail.
Yes, and Allu Arjun was born on this day in 1982. He's an actor who works in Telugu cinema. Allu Arjun's accolades include a National Film Award, 6 Film Awards and 3 Nandi Awards. He's also known for his dancing abilities and is popularly referred to as a stylish star, an icon star in the media. And Allu Arjun's highest grosser came with Pushpa, The Rise in 2021 and a sequel, Pushpa 2, The Rule in 2024, the latter of which ranks among the highest grossing Indian films of all time. He received high acclaim for his performance in Pushpa, The Rise, which earned him his first National Film Award for Best Actor and his 4th Filmfare Award for Best Actor Telugu. In 2024, he was honoured with the IFFI Special Recognition for contribution to Bharatiya Cinema Award at the 55th IFFI. Let's listen in to a dialogue from his movie, Pushpa 2, The Rule.
मैं गया क्योंकि मेरा दिल जाने को था समझा पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या फ्लावर नहीं फायर है मैं
और आज पुण्यतिथि है सुप्रसिद्ध सरोद वादिका शरण रानी की 9 अप्रैल 1929 को दिल्ली में उनका जन्म हुआ था और ऐसे समय में जब लड़कियों का संगीत के क्षेत्र में आना अच्छा नहीं माना जाता था तब वो पहली महिला थी जिन्होंने सरोद जैसे साज को चुना जिसे आमतौर पर पुरुषों का साज माना जाता था और इसलिए उन्हें सरोद रानी यानी क्वीन ऑफ सरोद के नाम से पुकारा जाता था उन्हें पद्मश्री और पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था और आज ही जयंती है सुप्रसिद्ध शास्त्रीय गायक कुमार गंधर्व की जिनका असल नाम शिवपुत्र सिद्धरमैया कोमकाली था गायन की उनकी एक अलग अनूठी शैली थी सुर ऐसे कि किसी वाद्य की जरूरत ही न महसूस हो और सबसे खास बात कि उन्होंने घराना परंपरा को तोड़कर शास्त्रीय संगीत की अपनी शैली विकसित की आइए सुनते हैं उनका एक भजन
Yes, and Amit Trivedi was born on this day in 1979. He's an Indian music composer, record producer, singer, songwriter, and musician who works primarily in Hindi films. Let's listen in to a hit track of his.
और श्रोताओं एक खबर आज हमारे पास आई है कि बुंदेलखंड के प्रसिद्ध राई नर्तक राम सहाय पांडे का आज 97 वर्ष की आयु में निधन हो गया उन्होंने राई नृत्य को दुनिया भर में पहचान दिलाई और भारत सरकार ने उन्हें 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया था श्रोताओं बुंदेली राई बुंदेलखंड का पारंपरिक लोक नृत्य है और राई का मतलब होता है सरसों जिस तरह से किसी थाली में रखे सरसों के दाने घूमते हैं उसी तरह नर्तक भी नगड़िया ढोलक झीका और रामतुला जैसे पारंपरिक पारंपरिक वाद्य यंत्रों की थाप पर नाचते हैं।
सो विद दैट इट्स टाइम टू वाइंड अप दिस एडिशन ऑफ परिक्रमा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। टिल द नेक्स्ट टाइम दिस इज मुदिता एंड मी अभिषेक मुखोपाध्याय साइनिंग ऑफ। बाय एंड
नमस्कार।